कहते हैं, जिसमें हम सिद्धांतों को प्यार करते हैं।
जिनसे भी हमारा संबंध होता है उनको भी हम प्यार करते हैं।
हमारी यह नियत रहती है कि इनको हम क्या चीज देंगे, क्योंकि हम उनको प्यार करते हैं। आपको हम प्यार करते हैं, इसलिए हमारे मन में जो बनावट होनी चाहिए वह सिर्फ एक ही बनावट होनी चाहिए कि हम आपके लिए क्या त्याग कर सकते हैं, हमको आपके लिए क्या करना चाहिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए क्या हम मददगार बन सकते हैं। हाँ, बन सकते हैं, पर हमको हर क्षण अपने आप से यह पूछना चाहिए और जो हमारे लिए संभव हो वह करना चाहिए। ठीक इसी तरीके से किसी महिला से, किसी लड़की से, किसी संबंधी से आप मोहब्बत करते हैं तो आपको निरंतर एक ही विचार करना चाहिए कि उसका व्यक्तित्व और स्तर ऊंचा उठाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसको प्रसन्न करने के लिए नहीं।
आदमियों को प्रसन्न करने की बात मत सोचिए, आदमी बड़े बदमाश हैं।
उनको प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे तो आप मरेंगे।
आदमियों को मत प्रसन्न कीजिए, वे बड़े बदकार हैं।
नहीं साहब, हम अपने भतीजे को प्यार करते हैं और प्रसन्न करना चाहते हैं, इसलिए वह जिसमें प्रसन्न होगा हम वही करना चाहते हैं।
मत कीजिए भतीजे को प्यार।
नहीं साहब, हम उसे प्यार करते हैं। आप उसे प्यार नहीं करते, वरन वह जो चाहता है आप वह करना चाहते हैं।
हाँ साहब,
हम वही करना चाहते हैं
जिसमें वह खुश हो सके। मित्रों,
अगर आप लोगों को खुश करना चाहेंगे तो आप अपनी आत्मा परमात्मा को खुश नहीं कर सकते।
आप अपनी आत्मा को खुश कीजिए और अपने परमात्मा को खुश कीजिए। दुनिया नाराज होती है तो एक सिरे से अंत तक नाराज होने दीजिए।
मैं आपको यह क्या समझा रहा था?
भक्ति के सिद्धांत समझा रहा था, भक्ति की निशानी बता रहा था। भक्ति एक दृढ़ता है, भक्ति एक फिलॉसफी है,
भक्ति एक आदर्श है। यह एक ऐसा आदर्श है कि अगर यह आपके जीवन में समाविष्ट हो सके तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप निहाल हो जाएंगे।
एक ही प्रश्रय भगवान का। मित्रों, मैंने कल आपको ज्ञानयोग के बाबत बताया था, ज्ञानयोग की दूसरी धारा के बाबत, गंगा यमुना की धारा के बाबत तथा दूसरी धाराओं के बाबत जानकारी दिलाई थी।
और आपसे यह कहा था कि आपको अपने संबंध में जानकारी होनी चाहिए। मैं यह जानता हूँ कि आपको बहुत जानकारी है।
आप BA
हैं, MA किया है, PhD किया है।
वह आपको मुबारक हो।
आपके बारे में हमें बहुत जानकारी है, आपका जनरल नॉलेज बहुत है, लेकिन वह आपके किसी काम का नहीं है।
क्यों?
क्योंकि आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान तक नहीं कर सके। आपको यह तक पता नहीं चल सका कि हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। आपको इस बात की भी जानकारी नहीं है कि कल परसों के बाद, अर्थात शरीर त्यागने के बाद में आपका क्या होना है। भगवान के यहां आपसे एक ही सवाल पूछा जाना है।
भगवान के दरबार में आपको जरूर पेश होना है, आप निश्चिंत रहिए।
वहां आपसे एक ही सवाल पूछा जाना है कि आपको जो जिंदगी मिली थी उसका आपने क्या किया, इस जिंदगी से आपको क्या करना था।
जिंदगी से आपको यह काम करना चाहिए था कि अपूर्णता को पूर्णता में परिवर्तित करना।
क्या किया जिंदगी का?
मित्रों, सारी जिंदगी हम अपूर्णता में 84 लाख योनियों में घूमते चले आए। अपूर्णता से पूर्णता में आने का एक ही रास्ता था, इंसानी जीवन।
आप चाहते तो पूर्णता प्राप्त कर सकते थे, जिसको हम मुक्ति कहते हैं, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, जिसको हम शांति कहते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए?
आपको सिर्फ एक काम करना चाहिए था, अपने कषाय कलमश को धोकर साफ कर लेना चाहिए था। यही दो रुकावटें हैं भगवान और इंसान के बीच।
उन्हें एक नहीं दो रुकावटें कह सकते हैं। यह एक ऐसी परिधि खड़ी हो गई है जिसमें भगवान उस परिधि के पीछे बैठे हैं और हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते, हम एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते। वैसे तो हम बहुत नजदीक बैठे हुए हैं, पर बीच में वह कौन सी दीवार है जो ईंट चूने की बनी हुई है? कषाय की ईंटें और कलमश के चूने से बनी हुई है। बस
तप का अर्थ समझिए। मित्रों,
भगवान को पाने के लिए क्या करना चाहिए?
कुछ नहीं करना चाहिए,
तप करना चाहिए। हाँ, तप कर सकते हैं। तप कैसे कर सकते हैं? तप करने का मतलब ब्लैकमेलिंग नहीं है। जैसा आप समझते हैं कि हम तप करेंगे, भूखे रहेंगे, हम पानी नहीं पियेंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे, फिर आप क्या करना चाहते हैं? आप भगवान पर दबाव डालना चाहते हैं।
हाँ साहब,
हम भगवान पर दबाव डालने के लिए तप कर रहे थे। अच्छा, तो आप दबाव डालकर काम कराना चाहते हैं। हाँ, हम खाना नहीं खाएंगे तो भगवान की नाक में दम हो जाएगी और भगवान की बड़ी निंदा और बदनामी हो जाएगी। तब भगवान अपनी नाक कटने से बचाने के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए हमारी मर्जी को पूरा कर देंगे। इसीलिए तप कर रहे थे। तप करने से आपका मतलब यही था?
हाँ साहब, यही था। मित्रों, तप करने का यह मतलब नहीं हो सकता।
तप करने से मतलब वह मशक्कत है, वह मेहनत है, जो कषाय और कलमशों की दीवार को तोड़ने के लिए हमको अपने आप से जद्दोजहद करनी पड़ती है, अपने आप को साथ में लड़ाई करनी पड़ती है। इसी का नाम तप है। पसीना बहाना इसी का नाम है। गर्म करना इसी का नाम है। गर्मी इसी का नाम है। आप अपने अंदर भरे हुए कषाय कलमशों के खिलाफ एक जिहाद खड़ी कर दें, एक महाभारत खड़ी कर दें। यह क्या हो गया?
ज्ञान हो गया। ज्ञानयोग क्या है?
ज्ञानयोग यह है कि हम पूर्णता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
कषाय कलमशों से मुक्ति। साथियों,
एक और चीज है जो हमारे फायदे में है,
वह है हमारा स्वार्थ। हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ होना चाहिए जिंदगी की पूर्णता।
अगर आप स्वार्थी हैं, तो आपको एक ही स्वार्थ पूरा करना चाहिए और अपनी इसी जिंदगी में उस स्थान पर जा पहुंचना चाहिए और वह सफलता प्राप्त कर लेनी चाहिए जो सबसे ऊंची सफलता कहलाती है। सबसे ऊंची सफलता क्या है?
आप इंसान से भगवान बने, नर से नारायण बने, पुरुष से पुरुषोत्तम बने, लघु से महान बने।
यह आपकी सबसे बड़ी सफलता है और आप यह कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी क्षुद्रताओं से लड़ना पड़ेगा। आपको अपनी क्षुद्रताएं घटानी पड़ेंगी और अपनी महानताएं बढ़ानी पड़ेंगी। इसी को मैंने कषाय और कलमशों का निराकरण कहा था। अगर आपको आत्मज्ञान आ जाए, तो आपके भीतर से एक ऐसी हूक उठेगी जो आपको बेचैन कर देगी और यह कहेगी कि हमको पूर्णता की ओर चलने के लिए अपनी गतिविधियों और कार्य प्रणालियों का निर्माण ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारे भीतर से अपूर्णता को दूर करके पूर्णता प्राप्त करने का अवसर मिल सके। अगर आपके भीतर ज्ञान नहीं आए, तब
फिर आपको यह जंजाल जकड़े रहेंगे, भौतिक नहीं आत्मज्ञान पाएं। मित्रों,
संसार में इतना बड़ा जंजाल है कि आप इसे कहां तक पूरा कर सकेंगे। हम पुस्तकें पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं आप?
साहब,
हम तो फिजिक्स पढ़ते हैं। बेटे, फिजिक्स इतना बड़ा विषय है कि आप जैसे 380 आदमी जन्म से मृत्यु तक इसे पढ़ें, तो भी नहीं पढ़ सकते।
जिन लोगों ने इस विषय को ढूंढ लिया है, उसको आप सारी जिंदगी तक क्या पढ़ेंगे?
नहीं साहब,
हम बड़े ज्ञानवान हैं, बड़े आए ज्ञानवान बनने वाले। मित्रों,
क्या करना चाहिए? हम जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, जिसको हम ज्ञानयोग की बाबत कह रहे थे, उस ज्ञानयोग की एक किरण जब आपके भीतर आएगी, तो आपको स्वयं के बारे में विचार करना पड़ेगा कि इंसानी जिंदगी जो हमारे लिए सबसे बेहतरीन उपहार था, सबसे नायाब मौका था, इसका हम अच्छा उपयोग कर सकते थे क्या?
आप विचार करेंगे तो आपको हजार रास्ते मिलेंगे। अगर आप विचार नहीं करेंगे तो सब रास्ते बंद मिलेंगे।
नहीं साहब, हम तो उन्नति कर सकते हैं और हमारे घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं। इस तरह आपको हमेशा परिस्थितियों की शिकायतें करनी पड़ेंगी।
आप जन्म भर परिस्थितियों की शिकायतें करते चलेंगे और जन्म भर यह बहाने बनाते चलेंगे कि हमको तो फुर्सत ही नहीं मिली थी, परिस्थितियां ही नहीं मिली थी।
बेटे, ये बेकार के बहाने हैं, इनमें कोई दम नहीं है।
जब तक आप में आत्मज्ञान का अभाव रहेगा, तब तक आप हमेशा शिकायतें करते रहेंगे।
अगर आपके पास ज्ञान आया, तो आपके मन में से एक और बात उठ सकती है और उस चीज का नाम है परमार्थ,
सर्वोच्च स्वार्थ। इस तरह एक है स्वार्थ, जिसका अर्थ है अपने आप को पूर्ण बना लेना। उन्नति करनी है तो ढंग की उन्नति कीजिए।
नहीं साहब, अपना मकान बना लेंगे, 11 रुपये की तरक्की हो जाएगी और हमारी नौकरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। बेटे, यह क्या तरक्की है? तरक्की करनी है तो पूरी कीजिए न, और फिर भगवान के मुकाबले जाइए न,
संतों के मुकाबले पहुँचिए न, देवताओं के मुकाबले पहुँचिए न।
नहीं साहब, हमारी बेइज्जती हो गई है और हमसे छोटे आदमी सब आर्डिनेट का प्रमोशन हो गया और हमारा नहीं हुआ, तो फिर आप अपना वह प्रमोशन कीजिए जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बड़ी बातों को आप समझते नहीं हैं और छोटी छोटी बातों के लिए फिरते हैं।
मित्रों,
अगर आपको अपना स्वार्थ साधना है, तो वह एक बात पर टिका हुआ है जिसको अकी कहते हैं।
नहीं साहब, अकी तो बहुत तेज है। हम फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, मैं उस वक्त की बात नहीं पूछता।
मैं तो उस अकी की बात पूछता हूँ जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, जिसकी गायत्री मंत्र में उपासना की गई है। प्रज्ञा की बाबत एक और बात है।
कौन सी बात? आपका परमार्थ, जिसको हम परम स्वार्थ कहते हैं। परम स्वार्थ क्या हुआ?
परमार्थ,
परमार्थ वह है जो भगवान के लिए किया जाता है। एक अपने लिए करना और दूसरा भगवान के लिए करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान पर एहसान जताने के लिए, भगवान के कर्ज ऋण चुकाने के लिए। क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? एक काम कर सकते हैं कि भगवान की इस खूबसूरत दुनिया को सुंदर बनाने के लिए, समुन्नत बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए हम अपना पसीना बहा सकते हैं और अपनी अक्ल लगा सकते हैं और अपनी कमाई का हिस्सा लगा सकते हैं।
कैसे करें भगवान को प्रसन्न? मित्रों, भगवान के लिए हमको लगाना चाहिए। आप धूपबत्ती जलाए चाहे ना जलाए। भाई साहब, धूपबत्ती आपके काम आएगी।
महीने भर में आप 25 पैसे बेकार गवा देते हैं।
25 पैसे की एक कप चाय पिया कीजिए।
एक कप चाय से गर्मी आ जाएगी, पसीना आ जाएगा, लेकिन धूपबत्ती जला देने से आपको कोई फायदा नहीं है।
नहीं साहब, धूपबत्ती से हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते।
भगवान को धूपबत्तियों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर आप क्या काम करेंगे? एक ही काम है।
अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, आत्मा को, मन को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अपने जीवन का स्तर ऊंचा बनाइए।
अगर आप में ज्ञान अक्ल हो तो तब अक्ल का दूसरा इस्तेमाल करें। भगवान की हमसे अपेक्षाएं।
मित्रों,
भगवान की भी जरूरत है। भगवान से आपकी भी कुछ जरूरतें हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आपकी भी भगवान से कुछ शिकायतें हैं। लेकिन एक दिन मैंने भगवान जी से पूछा कि इंसान से आपकी भी तो कुछ आवश्यकताएं नहीं है।
उन्होंने कहा कि हाँ,
इंसान से हमारी भी कुछ मांगे हैं। क्या मांगे हैं?
उन्होंने कहा, जिस दिन आपको पैदा किया था तो बस एक काम के लिए पैदा किया था कि आप उसकी खूबसूरत दुनिया को, उसकी बनाई हुई दुनिया को ज्यादा सुंदर, ज्यादा समुन्नत, ज्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए अगर आप कुछ योगदान कर सकते हो तो करें। भगवान ने आपको एक असिस्टेंट के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में, एक सबऑर्डिनेट के रूप में, एक प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में बनाया था, ताकि हमारी अकीका, हमारे जैसा, हमारी योग्यताओं विभूतियों से भरा हुआ हमारा एक उत्तराधिकारी पैदा होगा। वह हमारे राज्य, हमारी हुकूमत और हमारी दुनिया को ज्यादा सुंदर और समुन्नत बनाने में हमारा हाथ बटाएगा। परंतु आपको तो भगवान से एक ही अपेक्षा है कि आप भगवान को धूपबत्ती चढ़ाएंगे। भाई साहब, एक दिन हमने भगवान से पूछा, क्यों साहब,
आपको कितनी धूपबत्तियों की अपेक्षा है? कहिए तो हम किसी आदमी से धूपबत्ती का एक बंडल पार्सल से भिजवा दें।
भगवान जी ने कहा, गुरु जी,
आप लोगों से कह देना कि हमें धूपबत्तियों की कतई जरूरत नहीं है।
भगवान का संदेशा। मित्रों, हमने फिर एक दिन भगवान जी से पूछा, क्यों साहब,
लोगों का यह ख्याल है कि सवा रुपये का प्रसाद बांटने से आपका गुजारा हो जाता है और आप प्रसाद खा करके प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान जी ने कहा, लोगों से आप कह देना कि यह सब बेकार है। प्रसाद बांटने से या न बांटने से हमें कोई शिकायत नहीं है। हमको प्रसाद खाना होगा तो हम किसी शक्कर की फैक्ट्री में जा बैठेंगे। शक्कर की फैक्ट्री में चूहे बन जाएंगे, चींटी बन जाएंगे और अपनी मनमर्जी की चाहे जितनी शक्कर खा लिया करेंगे। लोगों को पैसा खराब करने की और प्रसाद बांटने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा, साहब, लोग तो नहीं मानते। वे तो कहते हैं कि हम सवा रुपये का प्रसाद बांटेंगे या मंगल के दिन हनुमान जी को मिठाई चढ़ा देंगे तो हनुमान जी खुश हो जाएंगे। तो फिर भगवान जी ने चुपके से कान में कहा, आप औरों से तो मत कहना, पर हमारी ओर से संदेश दे देना कि हनुमान जी ने यह कह दिया है कि हमको डायबिटीज हो गई है।
आप शक्कर की गोलियां खिलाएंगे तो हम और ज्यादा बीमार हो जाएंगे, तो लोग मान जाएंगे।
पागलों से, लोगों से आप यही कहना। इन पागलों से आप यही कहना कि जो देवी को बकरा खिला करके, हनुमान जी को चने के लड्डू खिला करके और भगवान जी को चांदी के छत्र चढ़ा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, उनसे कहना कि पागलो।
गहराई में चलो, वास्तविकता को समझो।
दुनिया और अच्छी बनाए ना।
मित्रों,
भगवान क्या चाहते हैं? सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि उस भगवान की दुनिया को सुंदर और समुन्नत बनाने के लिए, खुशबूदार बनाने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं?
साहब,
हम क्या कर सकते हैं? इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास पैसा न हो तो कोई बात नहीं है। आप अपना पसीना खर्च करके हजारी किसान के तरीके से सारे बिहार में आम के बगीचे लगा सकते हैं और अपने आप को अजर अमर बना सकते हैं। पिसनहारी के तरीके से अपनी मेहनत और मशक्कत लगाकर तथा पसीना बहाकर दुनिया को सुंदर बनाने के लिए आप बहुत काम कर सकते हैं। पीड़ा और पतन से दुनिया बेहाल है। आप दुनिया के मानसिक पतन और शारीरिक पीड़ा तथा अभाव और अज्ञान को दूर करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी अकी के सहारे, अपनी समझ के सहारे, अपने परिश्रम के सहारे, अपने पैसे के सहारे आप इस मद में बहुत कुछ कर सकते हैं।
खबरदार,
जो यह कहा तो। नहीं साहब, हमारे पास तो पैसा नहीं है।
पैसा नहीं है, यह तो भाई साहब मत कहिए।
आप तो यूं कहिए कि हमारा दिल नहीं है। ऐसा शब्द कहेंगे तो मैं मान लूंगा। आप यह बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं?
साहब,
3 बच्चे हैं। तो मैं यह पूछता हूँ कि अगर भगवान आपको एक और बच्चा दे दे तो आप उसका पालन करेंगे कि नहीं?
इस चौथे बच्चे को आप जिंदा रखेंगे या मारकर फेंक देंगे?
नहीं साहब,
उसको भी जिंदा रखेंगे।
हम जो खाएंगे वह उसे भी खिला देंगे, कपड़ा पहना देंगे, ब्याह शादी भी कर देंगे। जब आप चौथे बच्चे का पालन कर सकते हैं, उसे रोटी दे सकते हैं, उसी गरीबी में से, तो आप एक हिस्सा भगवान को क्यों नहीं दे सकते? कृपण कहीं का, निष्ठुर कहीं का, फिर बार बार यह क्यों कहता है कि कंगाली में आ गया? जब कंगाली में आ गया है तो फिर रोटी कैसे खाता है? बड़ा आया कंगाली में आने वाला हो इस स्तर की भक्ति।
मित्रों,
भगवान के लिए हम प्रत्येक परिस्थिति में कुछ कर सकते हैं। हम गरीबी में भी कुछ कर सकते हैं, हम व्यस्त जीवन में भी कुछ कर सकते हैं, हम अभाव में भी कुछ कर सकते हैं, दरिद्र होकर भी कुछ कर सकते हैं, हम शरीर से असमर्थ होने पर भी कुछ कर सकते हैं, महिला होकर भी कुछ कर सकते हैं, देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, अर्थात भगवान के लिए हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। अगर आपके भीतर इस तरह की भक्ति उत्पन्न हो, तो मैं यह कहूंगा कि आप भगवान के भक्त हैं, आप भगवान के परायण हैं, अर्थात आपने भक्ति करना जान लिया है और भगवान को कुछ देना सीख लिया है। आप अपने आप को दीजिए ताकि आप अजर अमर बन सकें और जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकें।
भगवान को आप दीजिए ताकि उसकी दुनिया को ज्यादा समुन्नत, ज्यादा शानदार और ज्यादा श्रेष्ठ बनाने में समर्थ हो सकें। इसको हम चरित्र निष्ठा और समाज निष्ठा कहते हैं। समाज निष्ठा यानी भगवान की पूजा अर्थात चरित्र निष्ठा। आत्म साक्षात्कार चरित्र निष्ठा के ऊपर निर्भर है। ज्ञानवान भक्तिवान। मित्रों,
यह क्या चीज है?
यह चरण नंबर एक है ज्ञान का और चरण नंबर दो।
आपके भीतर से जब ज्ञान की धारा उदय होगी तो दो चीजें आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। रोटी भी जरूरी है, कपड़ा भी जरूरी है, ठीक है,
पेट भी जरूरी, औलाद भी जरूरी, ये भी ठीक है, शरीर को सुविधा भी जरूरी है, मनोरंजन भी जरूरी है, ये भी ठीक, सब ठीक है। लेकिन यह भी ठीक है कि आपकी मौलिक आवश्यकताएं, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं दो हैं।
कौन कौन सी दो हैं? एक आवश्यकता वह है जिसमें हम अपना आत्मकल्याण करते हैं और दूसरी वाली हमारी आवश्यकता वह है जिसमें हम लोक कल्याण करते हैं। लोक कल्याण और समाज कल्याण करने के लिए जब आपके भीतर से उमंग उत्पन्न हो, तो मैं कहूंगा कि आप ज्ञानवान हो गए और आप भक्तिवान हो गए।
ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इन सिद्धांतों को अगर आप हृदयंगम कर लें, तो आपका ज्ञानयोग सार्थक और आपका भक्तियोग सार्थक है। विडंबनाओं से बाहर आएं। साथियों,
अगर आपने ऐसा न किया तब ठीक है, विडंबनाएं तो चल ही रही हैं, मजाक तो चल ही रहा है, मखौल तो चल ही रहा है, दिल्लगीबाजी तो चल ही रही है, आप भी इसमें शामिल हो जाइए।
बहुत से आदमी हैं दिल्लगीबाज, भगवान का मखौल उड़ाने वाले, आत्मा का मखौल उड़ाने वाले, परमात्मा का मखौल उड़ाने वाले।
छोटे छोटे कृत्यों, कर्मकांडों के आधार पर अपने मन को बहलाने वाले ढेरों के ढेरों आदमी भरे पड़े हैं, आप भी उन्हीं में शामिल हो जाइए।
लेकिन अगर आपको शामिल न होना हो और आपको वास्तविकता के नजदीक जाना हो, गायत्री माता का वास्तविक स्वरूप समझना हो, गायत्री माता की वास्तविक कृपा की आवश्यकता हो,
गहरी और तात्विक उपासना करनी हो, तो मैं आपसे कल भी निवेदन कर रहा था और आपसे आज भी जोरदार शब्दों में निवेदन करूंगा कि आपको भक्तियोग का अनुयायी होना चाहिए और आपको ज्ञानयोग का अनुयायी होना चाहिए।
योग की त्रिवेणी। मित्रों,
तीसरा वाला एक और चरण रह गया है।
दो चरण मुख्य हैं।
तीसरा इनको मिला देने से बन जाता है।
गंगा यमुना दो मुख्य हैं। इसी तरह ज्ञान और भक्ति दो मुख्य हैं।
इन दोनों का जब समन्वय हो जाता है तो एक और नदी बन जाती है जिसको हम सरस्वती कहते हैं,
जिसको हम कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग क्या है?
सैद्धांतिक, भावनात्मक और बौद्धिक, इन तीनों का जब समन्वय हो जाता है तो हमारे व्यवहार में और आचरण में जो बात बन जाती है वह कर्मयोग कहलाती है। मूल धाराएं दो ही हैं, गंगा और यमुना दो ही हैं, दिन और रात दो ही हैं, लेकिन दिन और रात को मिला देने से संध्या हो जाती है।
ज्ञानयोग और भक्तियोग दो ही योग हैं।
इन दोनों को मिला देने से कर्मयोग बन जाता है। इन सिद्धांतों और भावनाओं का समन्वय करने से जब हम अपने व्यवहारिक जीवन में उन्हीं आदर्शों को और सिद्धांतों को स्थान देते हैं तो हम कर्मयोगी कहलाते हैं।
मित्रों, कर्मयोग के बाबत रह गया, इस बाबत फिर बताऊंगा। आज की बात समाप्त। ओम शांति।